نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمين يا رب العالمين. همني أبي تك سیرت میں فتح مکہ دیکھ لیا، اور اس کے بعد حنین اور تبوک ہم نے دیکھا، اور ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ پیچھے رہ جانے والے میں سے تھے، جن میں اکثر منافقین تھے، لیکن تین صحابہ کرام پکے ایمان والے تھے. اس کے باوجود کچھ ایسی نیگلیجنس ہو گئی کہ وہ غزوے میں حصہ نہ لے سکے. اور جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ تبوک میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن بہت سارے واقعات ہم نے ڈسکس کیے تھے جو اس سفر میں پیش آئے تھے. آپ کو میں نے پوری بات سنا تو دی تھی، پورا قصہ سنا دیا تھا ان تین لوگوں کا، کعب بن مالک کی زبانی، لیکن اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ بک میں سے بھی ہمارے سامنے دوبارہ ایک ذہن میں ریفریش ہو جائے. تو پیج نمبر 329 پہ مخلفین، پیچھے رہ جانے والے، یہاں سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ تبوک کے انڈر یہ ہیڈنگ ہے. جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے آ کر معذرت کی اور قسمیں کھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ظاہر قبول کر لیا اور باطن اللہ کے حوالے کر دیا. تین سچے مومن بھی آئے جو پیچھے رہ گئے تھے، اور یہ تھے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ. انہوں نے سچ سچ کہا اور کوئی عذر نہیں تراشا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان سے بات نہ کریں. چنانچہ ان کے لیے لوگ بدل گئے، زمین انجانی ہو گئی، اپنے آپ سے تنگ آ گئے اور دنیا اندھیر ہو گئی. 40 دن گزرے تو مزید حکم آیا کہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں. یہ سب ہم الحمدللہ ڈسکس کر چکے ہیں. پھر 50 دن پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی یہ آیات نازل کریں، جن کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ نے ان تین آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی جان پر بن آئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر پناہ کی کوئی جگہ اور نہیں ہے، اگر ہے تو اسی کی طرف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں. یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے. اس سے مسلمانوں اور پیچھے رہ جانے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. لوگوں نے ایک دوسرے کو خوشخبری اور مبارکباد دی. لوگوں نے آپس میں کیوں مبارکباد دی جبکہ توبہ تو ان کی قبول ہوئی تھی؟ اس لیے کہ آپس میں وہ اس طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ کی خاطر یہ محبت کی تھی. جس وقت اللہ کا حکم آیا ان سے بائیک آؤٹ کر دیں، تو کسی ایک نے بھی اپنی زبان نہیں کھولی، ان کے ساتھ بات نہیں کی. جس وقت ان کی توبہ قبول ہوئی تو سب نے ایسے خوشی منائی جیسے ان کو کوئی خوشخبری مل گئی ہو. سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے سچی خیر خواہی، اور یہ ہوتی ہے اخوت. اسلامی اخوت اسی کو کہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی خوشی ملے تو اس وقت آپ کا دل خوش ہو جائے، اور کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر دل غمگین ہو جائے. اسی وجہ سے مسلمانوں کو کہا گیا کہ جستے واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں. ایک جگہ کو تکلیف ہوتی تو دوسری جگہ خود بخود تکلیف محسوس کرتی ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں، خوشی کی بات ہے تو سب کو خوشی ہے، یہ نہیں کہ کسی کو جلن ہو، کسی کو حسد ہو، ان کو کیوں مل گیا یہ. بیٹھے بٹھائے دیکھو ان کی توبہ بھی قبول ہوگی، ان کو جانا بھی نہیں پڑا اور ہم ایسے ہی مصیبت سہتے رہے. ان کو تو وہ سارا کچھ اٹھانا ہی نہیں پڑا، مشکل اٹھانی ہی نہیں پڑی، آرام سے بھی بیٹھے رہے اور اب بھی توبہ قبول ہو گئی، یہ کیا بات ہوئی. نہیں، اس قسم کی باتیں وہ نہیں کرتے تھے. آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری امت کا یہ ہو گیا ہے کہ دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر خوش نہیں ہو پاتے، دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر دل بجھ جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے. کسی کو اتنی بڑی خوشی مل گئی، اس کو کیسے مل گئی، اس کو کیوں مل گئی، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، مجھے مل جاتی یا مجھے نہ بھی ملتی لیکن اس کو نہ ملتی. یہ آج کتنا بڑا پرابلم ہے نا، دل صاف نہیں ہے. اور وہ دیکھیں मुबारकबादें दे रहे हैं। इंसान पूछे किस बात की मुबारकबाद, आपको क्या मिल गया। लेकिन यही फर्क है हमारे और उन लोगों के दिलों में, कितने साफ और शफाफ दिल थे उनके, कितने एक दूसरे से जुड़े हुए दिल थे। जब अल्लाह का हुक्म आता था फिर भी ये भी नहीं था कि अल्लाह का हुक्म आया है तो फिर कोई जाके चुपके चुपके बातें कर ले, उनसे जाके मिलता रहे, पीछे किसी को पता नहीं चलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर वक्त नहीं देख रहे होते थे, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया था तो ऐसे अजनबी बन गए जैसे जानते भी ना हो। तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज अल्लाह की खातिर मोहब्बत, उसकी खातिर दोस्ती और उसकी खातिर दुश्मनी, और ये ईमान की निशानी होती है, अल्लाह की खातिर दोस्ती और अल्लाह की खातिर दुश्मनी। हम अपनी खातिर ही दोस्तियां करते हैं और अपनी खातिर ही दुश्मनियां करते हैं। हमें कोई कह दे हमारी जात पे कोई हर्फ आ जाए तो दुश्मनी है, हमें कोई फायदा दे तो फिर अल्लाह का हुक्म कुछ भी है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। देख लें, ये एक बड़ी आला मिसाल है उस सोसाइटी की कि वो कैसे लोग थे। फिर उन्होंने मुबारकबाद दी, इनाम दिए, सदके किए, और ये इनकी जिंदगी का मुबारक तरीन दिन था। तो उन लोगों ने भी जो जिनकी तौबा कबूल हुई थी उनमें तो खुशी की लहर दौड़ी, बाकी सबकी भी जिंदगी का एक बड़ा खूबसूरत दिन था ये। जबकि कुछ और आयतों ने मुनाफिकीन का भांडा फोड़ दिया, उनके झूठ का राज खोल दिया और सच्चे मोमिनीन को बशारतें दी। बस तारीफ जहानों के परवरदिगार के लिए है। यहां तक इस गजबे की सारी दास्तान मुकम्मल होती है। और ये गजवा जैसे कि आप देख रहे हैं 9 हिजरी में हुआ, और यहां से वापस आने के कुछ अरसे बाद ही एक अहम वाक्या हुआ था जो मैं आपको बता चुकी हूं। जस्ट मैं आपको, तो क्योंकि टाइमिंग उसकी अब की है, यहां पे नहीं दिया हुआ, लेकिन हम चूंकि डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ आपकी एक याद दहानी के लिए मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। आपको याद होगा जब ताइफ का मुहासरा किया था फतेह मक्का के बाद, और उसके बाद आपको पता है कि वहां से मुसलमानों को कुछ ज्यादा नहीं मिला था, सहाबा वापिस ऐसे ही लौट आए थे। मुआसरा कुछ दिन जारी भी रहा लेकिन कुछ खातिर ख्वाह उसका नतीजा नहीं निकला। वो वहां से वापस आ गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ भी की थी, याद है आपको, और फरमाया था कि अगली दफा हम नहीं आएंगे, ये आएंगे। तो उनका एक सरदार उरवा बिन मसूद था, आपको हुदैबिया के उससे याद होगा, उरवा बिन मसूद। उरवा बिन मसूद का जो बाप था ना, वो इस्लाम का बड़ा दुश्मन था। तो लेकिन ये बड़े समझदार थे, ये आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और इस्लाम ले आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी थी इन्होंने कि मैं जाके अपने लोगों में तबलीग करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका था इनको कि तुम्हारे लोग जो है ना वो बड़े सख्त हैं। आपको पता है ताइफ वालों ने पहले भी किया किया था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और इनके पास गए थे, और अभी भी यानी इन्होंने मुहासरा किए रखा। उन्होंने कहा हम तो निकलेंगे ही नहीं, आप मुहासरा किए रखें, हमारे पास सब कुछ अंदर ही है, हमारी खेतियां भी, हमारे जानवर भी, हमारा पानी भी, सब कुछ अंदर है, हम तो चाहे सालों साल इसी तरह रहें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा हमारा मुहासरा करके। तो बड़े सख्त किस्म के लोग थे। तो देख भी लिया था उन्होंने कि मक्का फतह हो गया, उसके बावजूद उन्होंने कोई भी नरमी जाहिर नहीं की। तो ये उरवा बिन मसूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह से कहने पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, वो लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि जैसे अपने बेटों से मोहब्बत करते होंगे उससे भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। उनको बड़ा वो ज़ोम था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। खैर वो गए अपने लोगों में जाके उन्होंने दावत दी, मगर लोग तो इतने तैश में आ गए, तीर चलाने लगे और उनको शहीद कर दिया था। अल्लाह अकबर। तो किसी ने आके उनसे कहा कि भाई क्या फायदा हुआ तुम्हारा इस तरह जान देने का। उन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे तो इकराम दिया शहादत दे के, और एक आखिरी उनकी ये ख्वाहिश थी कि मुझे अब शहादत, जब मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे ताइफ वालों के साथ, जो शुहदाए ताइफ हैं उनके साथ मुझे दफनाना, यानी जो मुसलमान, जब मुहासरा था तो उस वक्त जो मुसलमान शहीद हुए थे, आपको पता है तीरों की बारिश भी हुई थी और कैसे उनके ऊपर ऑयल गिर गया था, तो वो लोग जो शहीद हुए थे उनको वहीं पे दफना दिया गया था ताइफ के बाहर ना। तो इनकी ये ख्वाहिश थी तो इनको वहीं दफनाया गया, और उसके बाद ये ताइफ वाले जो लोग थे, इन्होंने बड़ा जरा सोचा कि जाहिर है उनको मोहब्बत तो बहुत थी, उनके सरदार का बेटा था, बहुत चाहते थे इनको, लेकिन अब जो ये काम हो गया उसके बाद सोचने पे मजबूर हो गए कि ये हमारे पास आया, इसने हमें ऐसे समझाया, चलो हम जाके सुनते तो हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। तो ये लोग फिर आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और इन्होंने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की, इनका वफद आया था, और ये लोग फिर इस्लाम ले आए थे। तो वो जो इतने सख्त लोग थे वो कैसे बदल गए, बाज़ दफ़ा इंसान सोचता है कि सख्ती की जाए ना तो सख्ती से काम बनते हैं, हालांकि जो काम नरमी से बनता है वो सख्ती से नहीं बन सकता। देखें, रहमत सबसे बड़ी ताकत है, रहमत जो है ना वो बहुत बड़ी ताकत है, उसका नतीजा चाहे देर से निकले मगर उससे जिस तरह दिल जीते जा सकते हैं, वो जोर और जबर और जबरदस्ती इससे नहीं, दूसरा आपके सामने दब तो जाएगा, आप समझते हैं कि इससे आपकी जीत हो गई, इससे जीत कभी नहीं होती, इसलिए कि दिल नहीं जीते जा सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उरवा की शहादत की खबर मिली थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो साहिब यासीन की तरह है, जैसे सूरह यासीन में है हबीब नज्जार का किस्सा, तो वो उनकी तरह है। तो ताइफ वालों के दिल अल्लाह ताला ने फेर दिए, और ये वाकया तबूक के बाद ही हुआ था। फिर और 9 हिजरी में क्या क्या हुआ, 9 हिजरी बड़ा अहम साल है, तो अब देख लें आपके जहन में थोड़ी सी पिक्चर आई कि 8 हिजरी में मक्का फतह हो चुका है, 9 हिजरी में ये तबूक का वाकया हो रहा है, और क्या हुआ, 3 डेथ्स हुई थी जो कि बड़ी अहम है, तो आप वो 3 से याद रखें, फिर आपको 1 बाय 1 तीनों को हम देखते हैं। नंबर 1, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब 9 हिजरी में तबूक से वापस हुए, इसी महीने नज्जाशी शाह हबश असहमा बिन अबजर ने वफात पाई। ये असहमा कौन था, वही नज्जाशी जिसको हम कहते हैं, जिसके पास हजरत जाफर तैयार गए थे, वही नज्जाशी। नज्जाशी उनका आपको पता है कि एक लकब होता था ना, टाइटल होता था, और ये बहुत ही एक रहमदिल बादशाह था। असल में जब ये छोटा था तो उस वक़्त इसके बाप को इसके चचा ने कत्ल कर दिया था, और इसकी फैमिली को, और चचा ने कब्ज़ा कर लिया था हुकूमत पर, और इनको कुछ इनके जो बाप के सपोर्टर्स थे वो ले गए, और एक जगह यानी जहाँ पे लोगों से दूर, शहर से दूर, जहाँ पे इनकी परवरिश की गई, तो वहाँ पर रहते हुए इन्होंने अपने दीन को, क्योंकि ईसाई थे, अपने दीन को समझा सीखा। इसी वजह से इनके अंदर आजी बहुत थी, बादशाहों की तरह अक्सर जो बादशाह जैसे मुतकब्बिर होते हैं बहुत वो होते हैं, तो वैसे नहीं थे। और इनकी एक ख़ास बात थी जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ हिजरत करने का मुसलमानों को कहा था, और वो यही थी कि ये लोगों को रिलीजियस फ्रीडम देते थे। इनके यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं थी जैसे यहाँ पे मक्का में किस तरह से जुल्म सितम ढाया जा रहा था, तो वो उनके यहाँ नहीं था। और पता चलता है कि ये इस्लाम ले आए थे लेकिन अपने इस्लाम को इन्होंने छुपाए रखा था, क्योंकि ज़ाहिर है वो बादशाह थे, और अगर वो अपने इस्लाम को ज़ाहिर करते तो ना सिर्फ उनको बल्कि जो मुसलमान वहाँ पे रहते थे उनके लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाती। तो कहा जाता है इन्होंने कुरान एक जगह लिख कर और अपनी जेब में रखा होता था। जब इनके जो भी वज़रा और उमरा और जो दरबारी होते थे, जब वो कोई बात करते थे इस तरह की कि ये बात है जो भी अपनी मुशरिकाना, तो वो अपना हाथ सीने पर रख के कहते थे कि मेरा इस पर ईमान है, मेरा इस पर ईमान है, यानी वो जो लिखा हुआ है मेरे पास, जो मेरी जेब में, तो काइंड ऑफ एक यानी इसको ही ना कोई झूठ है इसके अंदर, और लेकिन सच भी वाजे नहीं किया। तो एनी हाउ, अब जब 9 हिजरी में इनकी वफात हुई थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इनकी नमाज जनाजा गायबाना पढ़ाई थी। इससे हमें ये बात पता चलती है कि गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई जा सकती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई थी, और लेकिन ऐसा नहीं था कि हर एक की गायबाना नमाज जनाजा, कोई कहीं पे भी, जैसे और भी कई सहाबा कहीं कहीं शहीद हुए कि उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी जा रही हो, ऐसा नहीं हुआ था। इनकी क्यों पढ़ाई गई कि इनके लिए, हो सकता है वहां पे किसी ने भी ना नमाज जनाजा पढ़ी हो, क्योंकि जाहिर है वो तो एक ईसाई मुमलिकत थी और इनका वहां पे नहीं हुई तो इसलिए यहाँ पे की गई। और इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज एक सच्चा मोमिन दुनिया से चला गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ख्वाब में भी दिखाया था कि नज्जाशी जन्नत में दो खूबसूरत हुल्ले पहने हुए मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्योंकि ये बड़े बादशाह थे, और जितनी बड़ी पोजीशन होती है उतना ही हक को मान कर और सरेंडर कर देना मुश्किल होता है। तो एक तो इनका किस्सा हो गया कि इनकी वफात हुई थी, दूसरी वफात हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, तो नंबर टू यहाँ पे लिख लें। फिर शाबान 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी यानी बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वफात पाई, आपने इनकी नमाज जनाजा पढ़ी, बकी में दफन फरमाया और इन पर सख्त गमगीन हुए। आपको पता है थोड़ा सा हज़रत उम्मे कुलसूम के बारे में कि ये वो बेटी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले अबू लहब के बेटे से हुआ हुआ था, उतैबा से। और अगरचे अभी रुख्सती नहीं हुई थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का पैगाम बताया लोगों को, दावत देनी शुरू की, तो अबू लहब ने अपने बेटों को बुलाया। एक बेटे का निकाह हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हुआ था, एक का उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ। तो अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरा उठना बैठना तुम्हारे साथ हराम है अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक ना दी। तो दोनों बेटों ने बाप के हुक्म के ऊपर इन दोनों को तलाक दे दी थी। फिर आपको जैसे पता है हज़रत रुकैया का पहले निकाह हज़रत उस्मान के साथ हुआ था, और निकाह को अभी चंद ही साल गुजरे थे कि हज़रत रुकैया की वफ़ात हो गई 2 हिजरी में, और हज़रत उस्मान को उनकी वफ़ात का इतना सख्त सदमा था। उस वक़्त फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उनसे कर दिया था। और इस वक़्त जब इनका भी इनकी भी वफ़ात हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान से फरमाया, अगर मेरे पास तीसरी लड़की होती तो मैं इससे भी तुम्हारी शादी कर देता। यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कदर प्यारे दामाद थे कि अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद, जब बच्चों की शादी या किसी की भी होती है, तो उसके बाद ही असलियत पता चलती है लोगों की कि वो क्या है। फिर समझ आता है कि उनका किरदार और अखलाक क्या था। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दूसरी बेटी भी हज़रत उस्मान को देते हैं और उसके बाद तीसरी के लिए भी ख्वाहिश करते हैं कि अगर तीसरी भी होती तो मैं वो भी तुम्हारे निकाह में दे देता, तो इससे इतनी बड़ी, इससे ज़्यादा क्या गवाही हो सकती है कि हज़रत उस्मान का किरदार और अखलाक क्या था। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे करीबी लोग होते हैं वो हमें जानते हैं कि हम क्या हैं। दूर के लोगों के साथ तो हम थोड़ी देर के लिए मिले और हंसी मजाक किया और बस, बहुत अच्छा अखलाक है जी इनका, वो बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात ये है कि हमारे घर वाले गवाही दें कि हमारे अखलाक अच्छे हैं, हमारे घर वाले ये कहें कि हमारे मामलात अच्छे हैं, हमारे घर वाले ये बताएं कि हम खौफ खुदा के साथ मामलात करने वाले हैं, ये बड़ी बात होती है। तो इसमें हमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गवाही मिल जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कि आप उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे शौहर थे और कैसे दामाद थे। सुभान अल्लाह, अक्सर ऐसा भी होता है कि जब कोई दामाद बन जाता है तो वो अपना बहुत बड़ा रोब झाड़ता है अपने ससुराल के ऊपर और बहुत बड़ी अपने आप को चीज़ समझने लगता है कि इनकी बेटी तो अब मेरे घर में है, अब मैं जैसे मर्जी इनको दबाऊं, जैसे मर्जी इनके साथ सलूक करूं या इनकी बेटी के साथ सलूक करूं, ये क्या मुझे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यानी इंतहा उनकी शराफत की, उनकी पाकीज़गी की, उनकी नेकी की, उसकी गवाही मिल जाती है हमें। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर तीसरी किसकी वफात हुई? तीसरी वफात پھر ذی قعدہ 9 ہجری میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول جو تھا اس کی وفات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کی نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی مگر آپ نہ مانے. لیکن پھر قرآن نازل ہو گیا جس میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی اس کی بھی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی, اس کے لیے دعا بھی مانگی. کچھ یاد ہے آپ کو عبداللہ بن ابی کون تھا اور اس نے کیا 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 تھا؟ اگر ایک لائن میں اس بات کو کہا جائے کہ اس نے کیا 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 تھا تو سمجھ لیں کہ اس کی زندگی کا مشن ہی یہ تھا کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کے خاندان کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے. یعنی اس کی ہر درجہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ کہیں سے مجھے کچھ مل جائے صحیح اور پھر میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, آپ کی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, آپ کی کمیونٹی میں ہو سکتے ہیں, آپ کے خاندان میں ہو سکتے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ یعنی کچھ ان کو گھر بلاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, ان کی دشمنی بھی بری, ان کی دوستی بھی بری, کیونکہ وہ ہر وقت اسٹو میں لگے رہتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں کچھ نظر آ جائے تو ہم اس کا بات کا بتنگڑ بنا لیں, ایک بڑا فساد کریٹ کر دیں اور ہم مطلب ایسا کچھ کریں کہ جو ہے بس ان کو تکلیف دیں کسی طرح. عبداللہ بن ابی انہی لوگوں میں سے تھا. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت, اور کیا کارنامے تھے اس کے؟ بس اتنی بات آپ لوگوں کو یاد ہے یا اور بھی کوئی باتیں یاد ہیں؟ آپ شروع سے دیکھ لیں, آپ کو پتہ ہے کہ شروع کے اندر اس کا پرابلم کیا تھا. اس کا پرابلم یہ تھا کہ یہ وہ بندہ تھا جس کو کہ اب اوس اور خزرج میں جو کتنے سالوں سے کئی سو سال سے جو لڑائیاں ہو رہی تھیں, اب فائنلی لڑائیاں بند کر کے اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کو ہم اپنا سردار بنا لیں گے, سمجھ لیں ایک بادشاہ بننے لگا تھا. اور اس کے بعد پھر جب اس کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا گیا, بلایا گیا یہاں پہ اور ان کو لا کے یہاں کی ایک طرح سے سب کی سرداری ان کو مل گئی, تو اس کے لیے تو یہ بہت ہی یعنی بڑی بات تھی کہ میرے سے ہٹا کر اور ان کو یہ دے دیا گیا تاج بادشاہت کا. اب اس کے لیے یہ بات ہضم کرنی مشکل تھی, اور انسان کا امتحان ہی تب ہوتا ہے, یاد رکھیے. یہ امتحان جو ہم چھوٹے چھوٹے یہ سوچتے ہیں نا کہ کوئی چیز کا مل جانا یا چھن جانا یا یہ ایک چھوٹے چھوٹے امتحان ہے. اصل امتحان تب ہوتا ہے جب کہ آپ کے ساتھ کسی اور کو, کوئی جس کو آپ یعنی وہ تو نہیں سمجھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بڑی ہستی نہیں سمجھتا تھا, آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو آپ کے اوپر پرائیورٹی دے دی جائے, تب پتا چلتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے. آپ دیکھیں ابلیس کا بھی امتحان تب ہوا جب آدم پیدا کیے گئے, اس کو میرے اوپر کیوں برتری دی گئی؟ میں تھا پہلے جب تک جنگ چل رہی تھی تب بھی تو کوئی بھی نہیں تھا, لیکن اس وقت اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی, لیکن جب اس کا ڈیسائیڈ ہو گیا, اس کا تاج بن رہا تھا اس وقت, اب اس سے چھن کے کسی اور کو اس کے اوپر پرائیورٹی دی گئی, یہ نہیں ہضم ہوتا. ہمیں بھی کوئی مثلا کوئی عہدہ ملا ہوا ہے, کوئی کرسی ملی ہوئی ہے, کوئی آپ کو کوئی مثال کے طور پہ آپ کو کوئی جی پی ایل بنا دیتا ہے, آپ کو کوئی ایڈمنسٹریٹو ورک دیا گیا, آپ سے لے کے اگر کسی اور کو دے دیا جائے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ہضم ہوتا ہے وہ؟ آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اگر وہ میرے سے بہتر کر سکتی تو کیوں نہیں, اللہ کا کام ہے اس کو بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. لیکن اس وقت ہمارا اندر پتا چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی کا عاجزی ہے, اس وقت ہم کہتے ہیں کیوں وہ کیا مجھ سے بہتر ہے جو کرے گی, میں کیا اچھا نہیں کر رہی تھی؟ انسان سے یہ برداشت نہیں ہو پاتا, اس کا یہاں سے ہی پرابلم سٹارٹ ہوا تھا और उसके बाद वो प्रॉब्लम, क्योंकि अंदर था ना प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम खत्म हुआ ही नहीं चाहे उसने कलमा भी पढ़ लिया। ये जो अंदर की बीमारियां होती हैं, ये इंसान इन पे खुद ना वर्क करे तो कोई सफाई नहीं कर सकता। जाहिर इंसान चमका ले, अपना आप दिखा दे कि मैं क्या हूं, बड़ा नेक हूं, मैं बड़ा इबादत गुजार हूं, मैं बड़ा नमाजी हूं, लेकिन अगर उसके अंदर बीमारी है, उस बीमारी को कौन साफ करेगा। इस बंदे ने उसके बाद चैन से किसी दिन, एक कोई पल नहीं इसने चैन से गुजारा, मुसलसल कोशिशों में लगा रहा कि किसी तरह मैं मुसलमानों को नुकसान पहुंचाऊं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रेपुटेशन है उसको नुकसान दूं, जिसको कहते हैं आस्तीन का सांप बना रहा। दुश्मन से भी जाके मुआवनत की, उनको भी उभारता था। आपको पता है मुहाजरीन और अंसार को लड़वाने की कोशिशें की, ओहद में अपने लोगों को लेके वापस चला गया था, खंदक में उसने क्या किया था, गजवा बनी मुस्तलक में उसने क्या किया था, जब उसने कहा था कि कौन है जो अब जाके जो इज्जत वाले होंगे वो जलीलों को निकाल देंगे यहां से। कितनी बड़ी बात थी जिसके ऊपर इसका अपना बेटा अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला खड़ा हो गया था इसके रास्ते में। क्या पता चलता है कौन है जलील और कौन है इज्जत वाला। तो पीछे पढ़ के देखें, बहुत सारी इसकी चीजें हैं जो कि इसने की, और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा खच्चर पे बैठे हुए आ रहे थे और तबलीग की, ये लोग बैठे हुए थे नीचे, कहता जाएं जाएं यहां से, हमने कुछ सुनना होगा तो आपके पास खुद आ जाएंगे, आपकी इसकी बदबू हमें यहाँ पे तंग कर रही है, जाएं यहां से। नहीं, वो सो डिसरिस्पेक्टफुल। और कोई एक दफा नहीं, इसकी तो यानी जब हम पढ़ते हैं तो इनकी जो बातें हैं वो इतनी तकलीफ दे लगती है, क्योंकि एक दुश्मन आपके सामने होता है, उसके साथ वो दुश्मनी करता है तो सामने नजर आती है, और एक वो होता है जो दोस्त के रूप में दुश्मन होता है। ऐसे लोग जो होते हैं इंसान को इस तरह से तकलीफ पहुंचाते हैं कि वो ना संभल पाता है, ना उसको समझ आती है, और जब तक समझ आती है बहुत नुकसान हो चुका होता है। तो ये जब तबूक से भी मुसलमान देखें कैसे एक तरह विक्टोरियस ही होके आए ना, अब इससे तो ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये क्या हो गया। तो उस वक्त जब मुसलमान वापस आए हैं तो ये बीमार हो गया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगुलरली इसकी इयादत करने को जाते थे। यानी सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए ऐसे अखलाक पे कि कितना आला अखलाक। इन्ना कला आला खुलुक अज़ीम, अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं फरमाया, ए नबी आप तो अखलाक पे जैसे सवारी कर रहे हैं, आला अजीम अखलाक के ऊपर जैसे सवारी कर रहे हैं, अखलाक भी आपकी सवारी है, यानी आप उस इतने बुलंद हैं आप अखलाक के मामले में, कि कोई ऐसा कर सकता है इतना सख्त तरीन जो दुश्मन है उसके साथ, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी आपकी प्यारी बीवी उनके ऊपर किस तरह से तोहमत लगाई, और इसकी भी शर्म ना की, किसकी बात कर रहा है। लेकिन जब बीमार हुआ है तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत फरमा रहे हैं, और फिर देखें आपके अखलाक को ही देख ले, देख के उसने ये जुरत की होगी कि उसने ये कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब मैं फौत हो जाऊं तो मैं चाहता हूं कि आप ही मुझे मेरे गुसल के वक्त भी मौजूद रहें, आप मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं, और आप अपना कुर्ता मुझे दें ताकि मुझे उसमें दफन किया जाए, और आप मेरे लिए मगफिरत की दुआ करें अल्लाह ताला से। तो जब ये फौत हुआ था तो इसका बेटा अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और कुर्ता मांगा था, तो आपने उतार के कुर्ता दिया था। इस बुखारी में रिवायत आती है तो वहीं से पढ़ के आपको बताती हूँ कि जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि जब बदर की जंग में हजरत अब्बास कैदी बनकर मदीना आए थे तो उनके बदन पर कमीज नहीं थी, चुनाचे हजरत अब्बास को कमीज जेबतन करवाने के लिए अल्लाह के रसूल ने कमीजें देखना शुरू की। अंसार ने भी कमीजों की तलाश की मगर कद लंबा होने की वजह से कोई कमीज हजरत अब्बास को पूरी ना आई। आखिरकार अंसार अब्दुल्ला बिन उबई की कमीज लाए, वो पूरी तरह फिट आ गई थी। ये कमीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास को पहना दी, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के एहसान का बदला जरूर देते थे, चुनाचे आपने इसी वजह से अपनी कमीज उतारी और दे दी थी, यानी इसके जनाजे के लिए। बुखारी की दूसरी रिवायत है अब्दुल्ला बिन उमर से, کہتے ہیں کہ قمیض ملنے کے بعد عبداللہ بن عبداللہ نے اللہ کے رسول سے گزارش کی کہ آپ جنازہ بھی پڑھا دیں، چنانچہ اللہ کے رسول اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ جنازہ پڑھا دیں، ساتھ ہی حضرت عمر بھی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ کے رسول کے کپڑے کا پلو پکڑا اور عرض کرنے لگے ہیں اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کے بارے میں استغفار کرنے سے روکا ہے، آپ نے جواب دیا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ ان منافقین کے لیے بخشش مانگیے یا نہ مانگیے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے 9، کوئی یعنی فرق نہیں پڑتا، آپ 70 بار بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا، اب میں 70 بار سے زیادہ بخشش مانگ لوں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد رونا آتا ہے اپنے اخلاق دیکھ کے کہ ہم اخلاق کے کس پائے پر ہیں، ہر حسن اخلاق وہ عمل ہے کہ جو میزان میں سب سے بھاری تلنے والا ہے، ہم تو اپنے دوست احباب کو بھی نہیں چھوڑتے، دشمن تو دور کی بات ہے، ہم تو اپنے رشتہ داروں اپنے دوست احباب اپنے جاننے والوں کو ہی اپنی زبان سے کاٹتے رہتے ہیں، انہی کے دلوں کو چھلنی کیے رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کے بھی دل چھلنی کر دیتے ہیں، ایسی زہر میں بجھی ہوئی زبانیں جب استعمال کرتے ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور چونکہ ہم بہت زبردست ہیں انٹیلیجنٹ ہے تو دیکھیں ہم نے کیسا جواب دیا، تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، یقین کریں اس کے بعد شرم آتی ہے، شرم آتی ہے کہ ہم کبھی کہیں کہ میرے اخلاق بہت اچھے ہیں، جی میں بڑے اچھے اخلاق کی مالک ہوں، اچھوں کے ساتھ تو سبھی مسکرا لیتے ہیں، کوئی دوسرا مسکرا رہا تو آپ بھی مسکرا دیے، اس میں کون سی آپ کی بڑائی ہو گئی، اصل اخلاق یہ ہیں، یہ ہیں ہمارے رول ماڈلز جن کو دیکھ کے ہم نے چلنا، مت کہا کریں کہ یہ وہ فلاں ایسے وہ تو جی دین پڑھنے والے عالم ایسے، کسی نے کہا فلاں عالم کی تو اس طرح انہوں نے بدتمیزی کی، فلاں نے تو ایسے کی، دیکھیں کوئی بھی ہمارا رول ماڈل نہیں ہے، ہمارے رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے اخلاق دیکھ لیں، باقی سب غلطی خطا کے پتلے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرما دی کہ میں 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگ لوں گا، ہم کہتے ہیں ہمارے سے ذرا کوئی زیادتی کر دے کہ آپ جہنم میں جلے، یہ ہم یہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں نہیں منائی، ہم کسی کے مرنے کے اوپر کوئی ہمارا مخالف ہو تو خوشی مناتے ہیں، لوگ پٹاخے چلاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہوا ہس کم جہاں پاک مصیبت سر سے ٹلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اولین طور پہ یہ کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس سے زیادہ کون دشمن تھا، یہ تو صفوں کے اندر دشمن تھا، دو لوگ تو باہر تھے، یہ تو ہر وقت ٹو میں رہنے والا دشمن تھا، اور دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، میں 70 سے زیادہ مرتبہ بخشش مانگ لوں گا، ایسے نبی سے کون نہ پیار کرے، سمجھ نہیں آتی وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں یا کتابیں لکھتے ہیں یا خاکے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کاش ایک دفعہ وہ جان لیتے کہ یہ ہستی ہے کیا، کاش ایک دفعہ وہ جان لیتے کہ وہ کون سی ہستی ہے جن کو ہم اس طرح سے ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں، ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو کوئی آپ کو یعنی آپ کی مخالفت تو کیا، کوئی میں کہتی ہوں آپ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، رہ ہی نہیں سکتا، یہ تو محبت کے قابل ہستی ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے نبی ہیں تو اس لیے نہیں، وہ واقعی رحمت للعالمین تھے، واقعی انسانیت کی معراج تھے، واقعی ایسے تھے، یہ نہیں کہ ہم تو ابلیگیٹڈ ہیں کہنے کے لیے کیونکہ ظاہر ہے ہم تو مسلمان ہیں ہم نے تو کہنا ہی ہے، نہیں، اٹھا کے دیکھ لو سیرت، پھر دکھاؤ ایسا کوئی اور نمونہ، ایسا کوئی اور بندہ جنہوں نے ایسے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو، ہم ہی یہ سیرت آگے پہنچانے میں ناکام رہے ہیں، ورنہ کبھی بھی کوئی ان کے بارے میں ایسی بات نہ کرتا، ہم نے اپنا کام نہیں کیا، غلطی ہماری ہے، ہم آگے پہنچاتے اس کو آگے پھیلاتے کبھی ایسا نہ ہوتا، اور ہم صرف احتجاجوں میں لگے رہتے ہیں، ہم اور چیزیں آگے پہنچانے میں لگے رہتے ہیں، بڑا کچھ اور ہم نے خود ہی نہیں ان کی زندگی کو سمجھا تو اور کسی کو کیا بلیم کرنا، ہم خود ابھی اس عمر میں آ کے پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، اوروں کو کیا بتائیں گے، اوروں کو کس وقت سکھائیں گے بتائیں گے، हमारे अपने बच्चों को नहीं पता। तो वो हस्ती वो है कि जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए दुआएं की हैं, और उनकी उम्मत, याद रखिए एक बात, उनकी उम्मत सिर्फ ये नहीं जो हम हैं, उनकी उम्मत जितने भी इंसान उनके बाद आए हैं ये सारे उनकी उम्मत हैं। लेकिन एक उम्मत दावत है, ये जो काफिर हैं वो उम्मत दावत है। हम ईमान ले आए, हम यानी उम्मत की भी दो कैटेगरीज कर लेना, एक वो उम्मत है जिसको दावत दी जानी है, एक उम्मत है जिसने दावत कबूल कर ली, तो वो भी उम्मत है, वो भी उम्मत ही कहलाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआएं दी हैं, दुआएं की हैं दुश्मनों के लिए, ताइफ वालों के लिए जिन्होंने दुआएं कर दी। और अब्दुल्ला बिन उबई, ये तो मतलब इसके बाद तो कुछ कहने की बात ही नहीं रह गई। कोई एक बंदा भी आप में से ये नहीं कह सकता कि जी मेरे ऊपर इससे ज्यादा किसी ने ज्यादती की है जितनी कि अब्दुल्ला बिन उबई ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आपके खानदान के साथ और मुसलमानों के साथ। अल्लाह अकबर। फिर ये भी आता है बुखारी में, सुन लीजिए, 1270 नंबर हदीस है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला बताते हैं कि जब अब्दुल्ला बिन उबई को कब्र में लिटा दिया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कब्र से निकलवाया, अपना थूक मुबारक, अपना लाब मुबारक उस पर छिड़क दिया। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं दफन और दुआ का थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि सूरह बरात की सूरत यानी तौबा का ये मकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ कि ए नबी, इन मुनाफिकों में से जो भी मर जाए आइंदा कभी इसका जनाजा ना पढ़ना और ना इसकी कब्र पर खड़े होकर दुआ करना, यकीनन इन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर किया और ये नाफरमानियां करते हुए मरे हैं। यानी फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो ये डिले था, अल्लाह ताला ये पहले भी उतार सकते थे आयात, मगर अल्लाह का इज़्ज़त था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते उस वक्त नमाज जनाजा, हो सकता है उसकी कोई एक नेकी हो जिसका बदला अल्लाह ने दुनिया में ही देना हो, क्योंकि मुनाफिकीन तो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। इनकी वजह से इस्लाम को जितना नुकसान पहुंचा उतना किसी से नहीं पहुंचा। तो देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सताने वाला था सारी जिंदगी, उसका उसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक क्या था, और अल्लाह ताला ने फिर इस बारे में क्या आयत उतारी। अल्लाह अकबर। तो यहां तक हमने ये देखी कि जो तीन डेथ्स हुई थी 9 हिजरी में, और 9 हिजरी में क्या हुआ ये, यानी अब 9 हिजरी अपने एंड की तरफ आ रही है, ठीक है। मगर एंड की तरफ जाने से पहले हम ये देखें एक चीज और कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारी चीजों से गुजर रहे हैं। कभी औलाद की तरफ से कोई ऐसा मामला पेश आ रहा है कि औलाद फौत हो गई है, कभी कोई प्यारे दोस्त अजीज की वफात हुई है, कभी मुसलमानों की तरफ से कोई सदमा मिल रहा है, कभी मुनाफिकीन पीछे पड़ गए हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से। आप देख रहे हैं ना, थ्रू आउट एक टर्मोइल है। आप कहीं देखते हैं कि कभी चैन की बांसुरी बज रही है और बड़े मजे के दिन आ गए हैं और आप पैर पे पैर रख के बैठे हुए हैं मुसलमान और बड़ा मजा कर रहे हैं और बड़ी इंजॉयमेंट हो रही है और बड़ी वेकेशन हो रही है, और अब उन्होंने कहा कि हमें आप थोड़ी वेकेशन चाहिए, अब हम जा रहे हैं, अब हम कहीं सैर के लिए जाते हैं, और अब हम नहीं। आप देख रहे हैं थ्रू आउट क्या चल रहा है। अभी तक आप सीरत पढ़ चुके हैं, इतनी इख्तिताम की तरफ है, लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं मिल रहा कि हाँ अब रिलैक्स हो गए हूं। मुसलसल मेहनत, मुसलसल कोशिश, मुसलसल ऐसे लग रहा है कि आंधियां टकरा रही हैं और ये फेस करते चले जा रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी ये बात, रुके कहीं नहीं है, चलते चले जा रहे हैं, और उसी के अंदर अपने तमाम हकूक फराइज भी अदा कर रहे हैं। यानी इट्स सच अ ब्यूटिफुल बैलेंस्ड लाइफ। हम बैलेंस जिंदगी का ढूंढते हैं ना कि कैसे बैलेंस करें जिंदगी, वो टाइम मैनेज्मेंट कैसे करें, हम कैसे ऑर्गेनाइज्ड हों। आपके लिए बेस्ट एग्जांपल तो आपके अपने रसूल हैं, उनसे ज्यादा बेहतरीन बैलेंस लाइफ किसी की नहीं हो सकती। आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि ये सारे अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, अब अल्लाह ताला हम सबको माफ करें, लेकिन हमारी जिंदगी में तो कोई एक वाकया हो जाता है ना तो फिर साल भर उससे हम निकल ही नहीं पाते और खड़े ही नहीं हो पाते। कोई काम क्या करेंगे, हम तो अपने काबिल भी नहीं रहते। बिस्तर पे पड़ जाते हैं, बस अब खत्म, अब ये, अब हमें ये सदमा हो गया, ये गम हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। कुछ हालात जरा से हमारी जिंदगी में अप एंड डाउन हो ना, कुछ मसला हो, तो हम किस तरह से टूट के बिखर जाते हैं और हम कुछ करने के काबिल नहीं रहते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ चलाने वाली थी, ऐसा नहीं था कि उनको कोई गम ही नहीं होता था, कोई सदमा ही नहीं होता था, कोई वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी उम्मे कुलसूम की वफ़ात पे इस कदर रोए थे, इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपदीदा थे, कब्र के पास तशरीफ फरमा थे और आंखों से आंसू जारी थे। और आपको पता है सबको कि औलाद इंसान को कितनी प्यारी होती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटे इससे पहले वफ़ात पा चुके थे, सिवाय इब्राहिम के, वो आगे जाके उनकी वफ़ात होती है, लेकिन बेटियां भी यानी हज़रत ज़ैनब भी, हज़रत रुकैया भी वफ़ात पा चुकी थी। तो इससे पता चलता है कि एक के बाद एक अपने बच्चों की भी यानी उनसे उनकी फौतगी देखना, उनका सदमा उठाना, फिर प्यारी बीवी का सदमा उठाना, फिर और इतने सारे वाकयात चल रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, लेकिन क्या चीज़ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े रखे हुए है, ये अल्लाह ताला के साथ उनका मजबूत ताल्लुक था जिसने उनको खड़ा रखा। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसी थी कि ऐसा नहीं था कि आप ये सारे काम कर रहे हैं तो अब आपने अपनी इबादत को इग्नोर कर दिया, नहीं, रात को खड़े जाते थे अल्लाह के हजूर, तहज्जुद पढ़ते थे, घंटों घंटों अल्लाह से बातें करते थे। दिन में अगर वो ये काम करते तो बाकी जिम्मेदारियां कैसे पूरी कर सकते थे, तो रात को अपनी नींद कुर्बान करके अल्लाह के आगे खड़े होके अल्लाह ताला से मुनाजात करते थे, अपनी नींद को कुर्बान करते थे, दूसरों के हक लेके नहीं देते थे। फिर उसके बाद यानी कितनी पहले से आपका दिन शुरू हो जाता था, फजर, उनकी तो सारी नमाजें ही मस्जिदों में होती, तो फजर मस्जिद में पढ़ के लोगों के मसाइल सुनते थे, फिर और अपने जितने काम होते थे वो करते थे, लोगों की आयादत भी करते थे, जनाजे भी पढ़ते थे, जंगे भी करते थे, अपने घर वालियों का भी, यानी ये भी आसान नहीं है एक से ज्यादा बीवी होना और उसके हकूक अदा करना, ये आसान काम नहीं। लोग कहते नहीं जी इतनी शादियां उन्होंने तो कर ली, शादियां करना एक बात होती और उनको निभाना, उनके हकूक अदा करना, ये जानते हैं कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज का आदमी एक घर नहीं चला पाता और शिकायत करने लगते हैं, कहां वो तमाम घरों को चला रहे थे और उनकी जिम्मेदारियों को पूरा पूरा अदा करते थे, और फिर यानी असर से मगरिब के दरमियान अपनी तमाम बीवियों के घर का चक्कर लगाते थे। ऐसे नहीं कि अगर इसकी बारी हफ्ते बाद आनी है तो हफ्ते बाद ही उसकी शक्ल देखेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी था कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ बैठे होते थे, बातें कर रहे होते थे, जब अजान होती थी तो ऐसे लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पराए हो गए, बिल्कुल अजनबी हो गए, मैंने फिर फौरन नमाज के लिए, फिर ऐसे जैसे को हमारे साथ ताल्लुक ही नहीं है, वहां नहीं कॉम्प्रोमाइज करते थे। हम अगर एक तरफ जाते हैं तो हम उसी तरफ को होके रह जाते हैं, भाई हर वक्त शॉपिंग है, घर है, ये है, वो है, इन्हीं के अंदर लग गए, तो बस अल्लाह को ही भूल गए, ना नमाजों का ख्याल है, ना कोई कुरान का ख्याल है, ना कोई कुछ। अगर हम नमाज कुरान की तरफ आ जाते हैं तो फिर अब ये मुझे सुनने में मिल रहा है, कुछ ईमेल्स आई मेरे पास, कुछ लोगों की बातें मुझ तक पहुंची कि जी कुछ मर्द कह रहे हैं कि ये तो बस कुरान पढ़ने क्या शुरू हुई इन्होंने, ना घर का ख्याल रखती हैं, ना शौहर का ख्याल रखती हैं, ना कहती हैं हमारे पर कोई घरों की जिम्मेदारी है, ना कोई सफाई करती हैं, ना कोई कुछ करती हैं। ये भी नहीं सही है, ये कहाँ से हमने असूल ले लिए। देखें इस्लाम तो हमें बैलेंस्ड लाइफ सिखाता है, इन्हीं रिश्तों के अंदर रह के उनको कैसे निभाना है, कैसे अल्लाह की इबादत को भी करना है, कैसे सारी चीजों को साथ चलाना है, यही तो खूबसूरत बैलेंस है जो इस्लाम ने हमें सिखाया कि डिसिप्लिन लाइफ कैसे गुजारो। अगर हम सारी चीजें छोड़ के रहबानियत ही अख्तियार करनी है फिर तो आसान ही थी, मसला है ही ये कि जो हमने पढ़ना है उसी को तो अप्लाई करना है उस जिंदगी में जाके, अगर उस जिंदगी को छोड़ दिया तो किस पे अप्लाई करेंगे। ये देखिए ये रट लेना, तर्जुमे रख लेना, ये सीरत की किताबें पढ़ के इसके टेस्ट दे देना कितने नंबर आए कितने, ये तो बड़ा आसान काम है। हमारा इम्तिहान असल ये इसमें नहीं है जो आपको टेस्ट दिए जाते हैं, हमारा असल इम्तिहान हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में है کہ اس میں ہمارے نمبر کتنے ہیں، ہمارے گھر والے ہمیں کتنے نمبر دیتے ہیں، ہم اب ان کے بھی حقوق نبھا رہے ہیں یا نہیں. اب ہم یا تو ایک طرف لڑک جاتے ہیں یا دوسری طرف چلے جاتے ہیں، بالکل ہمیں سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ دیکھا کھاتے ہوئے، تو کھانا پکاتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا عائشہ تمہارا اب یہی شغل رہ گیا کھانا پکانا ہی. یعنی اس سے یہ ایک ضرورت ہے لیکن اس سے بڑے اہم کام ہے جو تمہیں کرنے ہیں. وہ سمجھتے تھے اس بات کو، تو وہ بھی کرنا ہے لیکن اسی کے اندر نہیں پھنس جانا کہ اسی کے اندر پھنسے میں دوپہر اور کھانا، رات اور کھانا، ایک نہیں کھانا ہم نے دوسرا کھانا، تیسرا کھانا، یا ہم نے اور کوئی اور ہی اپنے ہابیز بنائی ہوئی ہیں جو ادھر ادھر کے شغل میلے ہیں، کبھی یہاں پارٹی، کبھی وہاں لنچ، کبھی وہاں کچھ شاپنگ، کبھی وہاں پکنک، پھر یہاں سے کٹ ڈاؤن کریں. حقوق تو ادھر کے بھی ادا کرنے ہیں اور ادھر کے بھی ادا کرنے ہیں، سب چیزوں کو لے کر ہی چلنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس میں بیسٹ مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے گھر کی بھی ذمہ داریاں نبھائیں، اپنی اولاد کی بھی نبھائیں، مسلمانوں کی ضروریات کا بھی کیسے خیال رکھا، کہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک لونڈی بھی راستے میں کھڑی ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی تھی کہ میرا یہ کوئی کام ہے، تو آپ اس کے ساتھ چل دیتے تھے وہ کام کرنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایکسیسیبل تھے، ایک بچہ بھی آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلام کر لیتا تھا، آپ تک پہنچ جاتا تھا. ایسے نہیں کہ کوئی بہت ایسی جیسے شخصیات ہوتی ہیں بہت ہائی شخصیت ہے جی، یہ اتنا پروٹوکول ہے ان کا، ان تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، ان کی تو شکل دیکھ ہی نہیں سکتا، ان کو تو ایک جھرمٹ میں لے جایا جاتا ہے اور اسی طرح لے جا کے کہیں سواری میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور لوگ ترستے ہی رہتے ہیں کہ ہم ایک جھلک ہی دیکھ لیں کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، ایکسیسیبل تھے، سب اپروچ کر سکتے تھے. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے نا، وہ ہمیں یہ سب سکھاتی ہے کہ کیسے اسٹرگلس میں بھی، کس طرح کی ایسی مشکل زندگی میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کرتے چلے جانا ہے. اور عورتوں کی بھی زندگیاں ان کی، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم عورتیں ہیں، تو عورتوں کی بھی زندگیاں بتاتی ہیں کہ کیسے وہ بیلنسڈ تھیں. کیا وہ نہیں قرآن کی تعلیم لیتی تھیں؟ کیا نہیں وہ پڑھتی تھیں؟ کیا نہیں وہ سیکھتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا نہیں وہ آگے احادیث بیان کرتی تھیں؟ کیا ان کو قرآن یاد نہیں تھے؟ کیا ان کے گھر نہیں چلتے تھے؟ صحابیات تھیں، کیا ان کے نہیں گھر چلتے تھے؟ لیکن بیلنس تھا نا ان کی زندگی میں. پھر آج کیوں یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ لوگ جب سے قرآن پڑھنے لگے انہوں نے تو گھروں کو ہی چھوڑ دیا، بالکل گھر کی ذمہ داریاں ہی نہیں لیتی، کہتی ہیں اب ہمارے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کسی کو پوچھنے کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ کہاں سے ہم نے سیکھ لیا؟ یہ کون سا دین ہے؟ ہمارے پر کسی ذمہ داری ہی نہیں ہے. تو ہم سیرت سے، اس زندگی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو بیلنس کریں، اور جس رشتے کی جو پرائیورٹی ہے اس کے مطابق اس کو جگہ دیں، جس کو جس جگہ پہ ہونا چاہیے اس کو اسی طرح کا ٹائم دیں. دیکھیں جیسے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا، اگر وہ سسرال میں جا کے کچھ بھی الٹا سیدھا کرتی ہے تو سسرال والے آگے سے کیا تانا دیتے ہیں کہ ماں نے یہ نہیں سکھایا، یا ماں نے یہ سکھا کے بھیجا تجھے. اسی طرح آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہسبینڈس کہہ رہے ہیں ارحما نے یہ سکھایا، یا ارحما نے یہ نہیں سکھایا ان کو، یہ حال ہو رہا. تو جو آپ کرتے ہیں گھروں میں وہ ڈائریکٹ، اور تو کوئی بھی چیز نہیں ملتی کسی کو، ظاہر ہے شیطان سب سے پہلے یہی سوچاتا ہے کہ یہ قرآن سے سیکھ کے آ رہے ہیں یہ لوگ، تو ڈائریکٹ اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور پھر لوگ چڑنے لگتے ہیں قرآن سے، اور کہتے ہیں دیکھ لیے قرآن والے بڑے اس طرح کے ہیں. میں کوئی رول ماڈل نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے انسان نے جب چلانے ہیں تو سارے رشتوں کو لے کے چلنا ہے، اور انہی کے اندر بیلنس رکھ کے چلنے میں خوبصورتی ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے. ورنہ کیا ہوگا، اگر کہیں پہ کچھ کمی آنے لگے گی تو ڈائریکٹ اٹیک. یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوگا، جو کوئی بھی، چاہے ٹیچر ہے، چاہے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے جی پی ایلز ہیں، سب یاد رکھیے گا، ڈائریکٹ نام قرآن پہ ہی آئے گا. क्या सीखती हो, क्या इतने घंटे बैठती हो कि अगर आपने ये नहीं सीखा तो ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कुरान के स्टूडेंट्स के लिए, सीरत पढ़ने वालों के लिए, जिनके साथ कुरान का नाम, जिनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो फिर ये सोचें कि हमें इस कुरान की तालीम की भी लाज रखनी है, इसकी भी इज्जत रखनी है। तो अगर वो कुरान अप्लाई ना हुआ तो फिर कहाँ गया। अल्लाह ताला हम सबको हिकमतें अता फरमाए, हम सबके वक्त में बरकत दे, हम सबको आसानियां दे दे अल्लाह ताला, ताकि हम सभी हकूक आसान तरीके से अदा कर सकें। अगला देखें, गजवात के मुतालिक चंद कलिमात। जाहलियत में जंग के माने थे बगैर किसी रहम और मुरव्वत के कत्लो गारत गिरी, आतिश जनी, उखाड़ पिछाड़, लूट मार, औरतों की बेहरमती, जमीन में फसाद, खेती बाड़ी और जानवरों की तबाहकारी। लेकिन इस्लाम ने आकर इस माने को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। अब इस बात को जब आप पढ़ते हैं तो आपको कैसा लगता है कि आज की जो जंगें हैं वो जाहिलियत की जंगों से ज्यादा करीब है या इस्लाम की? जाहिलियत की जंगों के माने ये थे जो यहां पे लिखे गए हैं। आज कौन सी जंगें लड़ी जाती हैं? हम नए दौर में आ रहे हैं या जाहिलियत के दौर में जा रहे हैं? चुनाचे इस्लाम ने क्या किया, उसने जंग को मजलूमीन की मदद, जालमों की सरकोबी, जमीन में अमन व अमान फैलाने, अदल कायम करने, कमजोरों को ताकतवरों के चुंगल से छुड़ाने, बंदों को बंदों की इबादत से निकालकर अल्लाह की इबादत की तरफ लगाने और अदियान के जुल्म से इस्लाम के अदल की तरफ लाने का जरिया बना दिया। ये किया इस्लाम ने, जंग को एक नया यानी माना दे दिया कि जंग किस लिए होती है। जंग इन चीजों के लिए नहीं होती, जमीन में फसाद करने के लिए, जुल्म करने के लिए, औरतों की आज कहां पे नहीं रेप होता, जहां पे कोई डोमिनेट करता है, कोई गालिब आ जाती है कोई कुव्वत, फिर वो औरतों और बच्चों का क्या हाल करते हैं, कितना खून खराबा होता है, कितनी ऊपर से बमबारी हो जाती है जिसमें पता ही नहीं है कि औरतें या बूढ़े हैं, बच्चे हैं या कौन है। इस्लाम तो ऐसा नहीं, इस्लाम तो कमजोरों को ताकतवरों के चुंगल से छुड़ाने आया। अरबों की आदत ना थी कि किसी के सामने सर झुकाएं, खा जंग जितनी भी तूल पकड़े और कीमत जितनी भी जबरदस्त चुकानी पड़े, उनमें ना एक हमियत बहुत थी, हैरत बहुत थी कि हम क्यों नीचे लगे, हम क्यों नीचे हों, हम क्यों बिच के आगे सुलह करें या कुछ है, हम तो नहीं सुलह करेंगे। इसलिए वो जंगे जारी ही रखते थे, बस एक जंग शुरू क्या हो गई, जब देखें किसी ने रुकना ही नहीं है, दोनों ने कहना कि मैंने नहीं रुकना, कोई तो पहल करेगा ना हथियार डालने में, और हर कोई समझता है कि मैंने अगर हथियार डाल दिया तो मैं नीचा हो जाऊंगा, तो जंग कभी खत्म हो सकती है? घरों की जंगों का भी यही हाल है, ये मैदान जंग की जंग का नहीं सिर्फ, ये भी जाहिलियत का तरीका था। सोचें, ये भी जाहिलियत का तरीका था। आज हमारे घरों में भी क्या वही तरीके नहीं है कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और दोनों कहते हैं मैं क्यों गिव अप करूं? जंग जितनी मर्जी तूल पकड़ ले, जितने मर्जी दिनों से बातचीत बंद हो, मैं क्यों सर झुकाऊं? तो किसी एक को तो पहल करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी पहल ही ना करे तो जंग खत्म हो जाए, कहीं से तो पहल होगी ना। एक कहेगा कि ओके आई गिव अप, मैंने हथियार रख दिया, अगर वो इसको समझता है कि इससे मेरी इज्जत कम हो जाती है तो मैं इसलिए नहीं रखूंगा हथियार, मैं इसलिए नहीं गिव अप करूंगा, तो फिर तो जंग जारी ही रहेगी, वो तो कभी नहीं खत्म हो सकती। जहां पे दो मियां बीवी के दरमियान भी इसी किस्म की झूठी अनाएं होती हैं, वहां पे भी नहीं जंगें खत्म होती, वहां पे चलती ही रहती हैं, क्योंकि दोनों ही जिद में अपनी पक्के हैं, मैं नहीं झुकूंगी, वो कहता मैं नहीं झुकूंगा। तो ये देखें जाहिलियत वाले भी ऐसे ही करते थे, हम पढ़ लिख के भी जाहिल रह गए, और हम अपने आप को समझते हैं कि हम 21st सेंचुरी के सबसे बड़े एडवांस्ड लोग हैं, हम तो 1400 साल पहले के उन जाहिलों के बराबर हो गए। चुनाचे बकर और तगलब के दरमियान जंगे बसूस 40 साल तक चलती रही, अल्लाह अकबर, सोच सकते हैं आप 40 ईयर्स में एक जनरेशन बड़ी होके दूसरी आ जाती है। और फरीकैन के कोई 70,000 आदमी मारे गए मगर किसी ने दूसरे के सामने सर ना झुकाया। औस और हजरत की लड़ाई 100 साल से ज्यादा चली। सोचें, यही मदीना के जो औस और हजरत कबाइल थे अंसार के, 100 ईयर से ज्यादा, कैन यू इमेजिन कि एक सेंचुरी उन्होंने जंग में गुजारे। हत्ता कि इनका यह हाल हो गया था, इनके तो सारे जो जो बड़े थे ना वो तो खत्म हो चुके थे। अब इसीलिए ये यंग पौध रह गई थी और बड़ों में ये अब्दुल्ला बिन उबई जैसे रह गए थे, वरना सारे जो बड़े बड़े इनके लोग थे, एजड लोग तो जा चुके थे, क्योंकि वो तो जाहिर है जंगों के अंदर खत्म हो गए। मगर किसी ने भी दूसरे के सामने सर ना झुकाया। ये इस्लाम से पहले अरब की आदत थी, जंग जारी रखना और दुश्मन के सामने सर ना झुकाना। तो इस्लाम ने तो सब कुछ बदल दिया, हमारे अंदर अभी तक इस्लाम क्यों नहीं दाखिल हुआ? अब जब भी जी चाहे ना कि मैं नहीं हथियार डालूंगी, मैं नहीं सर झुकाऊंगी, तो यही बात सोच लीजिएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए तो अरब ने आपका भी इसी असलूब से सामना किया और आपको भी मैदान जंग तक घसीट लाए, लेकिन आपने एक दूसरे ही असलूब से इनका सामना किया जो नहायत हकीमाना था। यहां तक कि इनका मुल्क फतह करने से पहले इनके दिल जीत लिए थे। जब ही तो वो लड़ने ही नहीं आए ना। आप देखें, मक्का फतह हुआ, वो लड़ने आए ही नहीं, वरना क्या उनको लड़ना नहीं आता था? क्या उनके पास हथियार नहीं थे? नहीं, इसलिए कि दिल जीते जा चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गजवात में काम आने वालों की तादाद और इन गजवात के नतायज का तकाबुल जब जाहलियत में पेश आने वाली जंगों के नतायज से किया जाए तो अजीबो गरीब बात सामने आती है। अब ये जो अगली बात आ रही है ना, इसको आपके पास हाइलाइटर है, उसे हाइलाइट कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गजवात और जंगों में कत्ल होने वाले सारे मुसलमान, मुशरिकीन और यहूदो नसारा की तादाद मजमुई तौर पर कमो बेश अप्रोक्सीमेटली 1000 बनती है, 1000 बनती है। यानी जितने मुसलमान, यहूदी, ईसाई, मुशरिकीन, जो भी यानी कत्ल हुए जंगों के अंदर, पूरे टोटल ब्लडशेड कितना था? 1000 का। अब इसको आप, वो कहते हैं ना कि उस जमाने उन्होंने जंगें जी बड़ी लड़ी, उन्होंने वहां जंग के लिए जा रहे हैं, वहां जंग। आप इस फिगर को देखें और अब की जंगों के फिगरों को देखें, फिगर्स को देखें, सामने रखें, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आज एक बम गिरता है और कैसे हजारों लोग बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आज के केमिकल वेपन्स क्या हाल करते हैं लोगों का। तो 1000 का तो फिगर कुछ भी नहीं, जो पूरी जिंदगी में आपने जंगे लड़ी और फिर भी ये कहना कि हाँ जी मुसलमानों ने तलवारों के साथ ये किया और वो बस लड़ते ही रहे और वो जंगे ही करते रहे। और वो खुद इस फिगर को कंपेयर तो करके देखो एक दफा, इसको आपने याद रखना। और इन गजवात में जो मुद्दत सर्फ हुई वो 8 साल से ज्यादा नहीं, यानी वो लोग 40 साल लड़ रहे हैं, कोई 100 साल से भी ऊपर लड़ रहा है, ये 8 साल से ज्यादा नहीं थी मुद्दत। मगर इतने थोड़े अरसे में, जाहिर 8 साल से ज्यादा नहीं थी, आप ये देख लेना कि फर्स्ट हिजरी से लेकर 8th हिजरी में तो वैसे ही सेकंड से शुरू हुआ, बदर से शुरू करके आप देख लें कि 9th हिजरी तक ये हुई है। अब इसके बाद तो कोई जंग है ही नहीं है, तो ये 8 साल बने ना। अब इन 8 सालों में ही सारी हुई, मक्की दौर में तो कोई जंग ही नहीं थी, इसमें भी तबूक में तो कोई जंग लड़ी ही नहीं गई। तो आप देख लें फिर कि कितनी जंगे हो गई, और नाम ऐसे बदनाम किया हुआ कि जैसे वो सारा टाइम जंगों में ही रहते थे। मगर इतने थोड़े अरसे में और इतना मामूली सा खून बहाकर आपने तकरीबन पूरे जजीरा अरब को अपना ताबे फरमान बना लिया और इसके अतराफ व अकनाफ में अमन व आमान का दौर दौरा हो गया। कहां ये वो अरब थे जहां पे यानी मुश्किल होता था कि कोई काफिला बच के जाए, लूट मार इतनी थी। ये हुरमत वाले महीने ही होते थे जिसमें कोई बचता बचाता कहीं पहुंच जाता था, वरना तजारती काफिलों को लूट लेते थे, और जो कहीं सफर कर रहे होते थे लोग उनको लूट मार करते थे। कितना अमनो अमान का दौर दौरा हो गया और इतनी बड़ी जगह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उससे ताकत से नहीं, जंगों से नहीं कॉन्कर कर लिया, इनके दिल कॉन्कर कर लिए। आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या, यानी कितने साल, 20 साल कह सकते, 20 साल में इतने बड़े इलाके को फतह कर लेना, और 20 साल के अंदर उन लोगों को जो हजारों साल से शिर्क में मुब्तला थे, उनकी उस ट्रेडिशन को, उनके उस मजहब को जड़ से उखाड़ फेंकना, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज आप इतने अरसे अरसे कोशिशें करते रहते हैं, 20 साल तो क्या, 100 साल से भी कोशिशें हो जाए, कहाँ हमारे मुल्कों में जो ईसाई लोग हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, कोई ना कोई कोशिश करता है, ना को किसी को ऐसी खैरख्वाही या परेशानी होती है कि इनको हम, इनके लिए भी कुछ सोचें कि इनको तबलीग की जाए। इसी तरह जो और माइनॉरिटीज हैं, कोई ऐसी खातिर ख्वाह चेंज नहीं है कि, हालांकि वो थोड़े लोग हैं, कोई ज्यादा लोग नहीं है, बहुत माइनॉरिटी में रहते हैं जो दूसरे गैर मुस्लिम हैं, लेकिन कुछ ऐसे खातिर ख्वाह रिजल्ट्स नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चेंज आ गई हो, भाई वो पूरे पूरे खानदान मुसलमान हो रहे हैं, कहीं आप खबरों में पढ़ रहे हो जी अब तो, यानी जितनी हिंदू आबादी थी अब वो कन्वर्ट हो गई है, ईसाई जोख दर जोख दीन में दाखिल हो रहे हैं। अब वो क्या दाखिल हों बेचारे, उनका भी क्या कसूर है, वो देखते हैं ये तो पता नहीं इनके अमल, इनके अखलाक, इनके मामलात इतने वर्स हैं, उनको क्या मिलेगा इधर आके। वैसे एक बस मजहब के खाने में इस्लाम तो लिखने से थोड़ी बात बन जाती, उनको क्या नजर आ रहा है हमारे अंदर के जो उनको अट्रैक्ट करे, उनका भी क्या कसूर। क्या तुम समझते हो कि ये तलवार की कुव्वत से मुमकिन है, बिलखसूस उन लोगों के लिए जो मामूली बात पर ना खत्म होने वाली जंग छेड़ देते थे, यानी जिसको कहते ना हम ऐसे लोग जो छोटी छोटी बातों में भड़क उठे और जंगें शुरू कर दी, ऐसे लोगों को समझाना कितना मुश्किल होता है, जो जंग के लिए तैयार होते हैं, उनकी गैरत ही इतनी होती है, उनकी अना ही इतनी होती है, हमने नहीं किसी के आगे झुकना, ऐसे लोगों को तो समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, उन लोगों के दिल जीत लेना। और हजारों पर हजार कुर्बान करते जाते थे, यानी वो पढ़ते तो नहीं थे, उनको तो खून बह रहा है, हजारों जाने जा रही हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता था, मगर ये सोच भी नहीं सकते थे कि सर झुकाएंगे। उनको आपका ख्याल, वो पूछा सवाल ये किया जा रहा है कि आपका क्या ख्याल है, इस किस्म की नेचर के जो लोग होते हैं उनको तलवार के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कर किया होगा, जो इस किस्म किया कि उनको तो खून बहता जाए, वो तो 100 ईयर से ऊपर हो गया था जंग करते हुए, उनके सारे जो जो लीडरशिप थी, ओल्डर सीनियर जो थे उनके सारे खत्म हो गए थे, उनको उससे नहीं कोई फर्क पड़ा, 40 साल जंग हो रही है, कितने खून बहे होंगे, दे डोंट केयर, उनके लिए ज्यादा बड़ी चीज थी कि हमने झुकना नहीं है, हम कैसे सर झुकाएं। ऐसे लोगों को आपका क्या ख्याल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवारें दिखाई तो वो डर गए और उसके बाद ईमान ले आए और इस्लाम में दाखिल हो गए, ये क्वेश्चन है, सोचें ये बात, तो फिर कौन सी चीज थी, अगर तलवार नहीं थी तो कौन सी, कोई तो चीज होगी, कोई तो ऐसी फोर्स होगी, फिर बात वहीं आ जाती है ना, हम सोचते हैं कि जबर, सख्ती और जोर आजमाई और या जंग या तलवार या लड़ाई, ये फोर्स है, इससे मैं दूसरे को दबा के काबू कर लूंगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। असल फोर्स फिर क्या थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, रहमत, वो रहमतुल आलमीन थे, इस फोर्स ने उन लोगों को कन्वर्ट कर दिया, और रहमत ऐसी, सुभान अल्लाह, जो एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा, देखिए अब्दुल्ला बिन उबई ने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया, अब तो उसका एंड ही आ गया था, अब तो कुछ कर ही नहीं सकता था, तो अब क्या है, अब बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बेबस पड़ा हुआ है, उसने कौन सा आखिर तक कोई कोशिश छोड़ दी थी, और कोई आखिरी जिंदगी में आके उसने ये काम छोड़ दिए, तो उसने सारी अपना थ्रू आउट टाइम पीरियड उसने इसी में गुजारा था, तो अब तो एक बंदा कह सकता था ना कि तुमने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं, आप क्या मुझसे कह रहे हो, आप तो कहना चाहिए था कि अच्छा है जाए ये मुसीबत टले, लेकिन देखिए सुभान अल्लाह, इसके बाद ना ऑनेस्टली मैं तो अपने आप के अंदर, आपको नहीं कह रही, मैं तो अपने आप के अंदर सोचती हूँ कि हम सोचते हैं कि मैं बहुत रहम दिल हूँ, मुझे बड़ा रहम आ जाता है, मेरा दिल बड़ा काइंड है, ऐसे है। लेकिन जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं तो फिर होता है कि नहीं, असल रहमत ये है, हमारे दिल तो सख्त हैं, हमारे दिल माफ़ नहीं करते। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें ऐसे दिल दे दे जो इतने बड़े हों कि लोगों की बातों को माफ़ कर दें। अल्लाह हमें ऐसे दिल दे दे कि कोई हमारे साथ ज्यादती भी करे तो हम दरगुजर कर दें। अल्लाह हमारे दिल समुंदरों की तरह बड़े कर दे, जिसके में लोग पत्थर फेंकते हैं तो समंदर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, छोटी सी बाल्टी के अंदर अगर आप छोटा सा भी पत्थर फेंकेंगे तो बहुत बहुत हलचल होगी, क्योंकि वो थो छोटा सा है ना, इसलिए जब हमारे दिल भी इतने छोटे होते हैं तो छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर ही हिल जाते हैं। अल्लाह समंदर जितने बड़े दिल दे दे हमें। हाँ, इसका जवाब फिर उन्होंने दिया, हरगिज नहीं, बल्कि आपने जो कुछ पेश फरमाया वो नबुव्वत और रहमत थी, रिसालत और हिकमत थी, दावत और मोजज़ा था, और अल्लाह का फजल और उसकी नेमतें खास थी। और बेशक ही अल्लाह का फजल ही होता है और उसकी खास नेमत ही होती है कि किसी को वो ऐसा ऐसी रहमत दे दे, ऐसा नरम दिल दे दे, इतनी हिकमतें अता कर दे। ये अल्लाह का ही खास फजल होता है, अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए ये। अब मैंने सोचा तो था कि हम आगे भी पढ़ लेंगे आज, लेकिन अब टाइम ओवर हो गया। असल में ये ख़त्म करना मकसद नहीं है, जो जितना हम पढ़ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करना, उसमें से सबक लेना अपनी ज़िंदगी के लिए, ये असल मकसद होता है। तो फिनिश करने को तो हम जल्दी जल्दी सारे पेजेस पढ़ने ही हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता पढ़ना। लेकिन हर लेसन से अगर हम कुछ लेकर उठें तो समझ लें कि हमने उसको पढ़ा है, और अगर सिर्फ रीडिंग की है पेजेस की तो कुछ भी नहीं पढ़ा। इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट टाइम ये देखेंगे, अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का हज। आप लोग प्लीज़ कोशिश करिएगा कि थोड़ा जो पीछे हमने पढ़ा है इसको आप एक दफ़ा रिवाइज़ करें, आप इस रूटीन में आएं, एक दफ़ा रिवाइज़ करके नेक्स्ट टाइम आइएगा, ताकि जब हम आगे पढ़ें तो आपको काफ़ी बातें समझ आएँ। इंशाल्लाह ताला जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।